मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 4 सितंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत मित्रों अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 12 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 मार्च से 17 मार्च 2019 के बीच में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो मैं विशेष रूप से स्वागत आज इसलिए भी करना चाहूंगा कि ये जो नया बैच हमारा अगले साल शुरू होगा 3 मार्च से 17 मार्च को के बीच में, और जिसकी घोषणा मैंने इससे पहले की थी, जिसकी इसकी सूचना मैंने दी थी, तो आज उस बैच के प्रथम आप कह लीजिए कि समूह का मैं स्वागत कर रहा हूं। तो बट नेचुरल है कि जो पहला होता है वो पहला ही होता है, आप सब जानते हैं। तो विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं और इन मित्रों के नाम हैं रंजीत कुमार मिश्रा, आपका गांव है बुधासी, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। वीपी कुमार, आपका गांव है कायमपुर, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से। शिवनाथ यादव, आपका गांव है औंगापुर, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। फुरकान अली, आपका गांव है उमरी, जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। दीपेश कुमार झा, आपका गांव है बिठौली, जिला दरभंगा बिहार से। प्रशांत कुमार तिवारी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। अविनाश वर्मा, पदरौना उत्तर प्रदेश से। अमन कुमार, आपका गांव है रतन सायर, जिला पूर्वी चंपारण बिहार से। सनी मेहरोलिया, आपका गांव है हल्दोनी, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से। सूरज प्रकाश मिंज, आप हैं रांची झारखंड से। शिव कुमार, आपका गांव है बाबूगढ़, जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश से। और उमेश कुमार सिंह, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। तो रंजीत, वीपी कुमार, शिवनाथ, फुरकान अली, दीपेश कुमार, प्रशांत कुमार, अविनाश, अमन, सनी, सूरज, शिव और उमेश, आप सभी 12 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत और बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे शहरी नक्सली इस पर बात करूंगा, शहरी नक्सली, राइट। लेकिन इससे पहले आइए हम लोग थोड़ी सी न्यूज एनालिसिस को देख लें। फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रपति जी अभी यात्रा पर गए हुए, विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, और उसमें आपने एक नाम सुना होगा जहां कल वो थे, साइप्रस, जहां की राजधानी निकोशिया है। मुझे लग रहा है कि मुझे साइप्रस के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताना चाहिए और मैं आपको कुछ नहीं बताने जा रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बताने जा रहा हूं कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह घटना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हां, भारत ने खासकर साइप्रस को, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें उसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। ये एक छोटी सी सूचना है, आप कह सकते हैं, साइप्रस की दृष्टि से। मैं चाहता हूं कि इसे आप खुद ढूंढें किस कॉन्टिनेंट में है और किस तरह का देश, आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, और ढूंढने के बाद, देखने के बाद बस आप भूल जाए, छोड़ दें, आपके दिमाग में वो चीज दर्ज हो गई, बस बात खत्म हो गई। यह मैं केवल इस उद्देश्य से कह रहा हूं कि जब आप ऐसा करेंगे तो होगा यह कि धीरे धीरे जो विश्व के देश हैं, और खासकर एक पर्टिकुलर ईयर में किसी न किसी कारण से जो चर्चा में आते रहे हैं, वो आपके दिमाग में दर्ज हो जाएंगे, तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो समझ होती है वो आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। और यहां तक कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी इससे आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो बस इस दृष्टि से आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से मित्रों मेहनत कर लें। जो दूसरी खबर है वो ये है कि आपने एक घोषणा सुनी है सरकार की, और वो ये है कि सरकार की तरफ से की गई है, नील का हमारे कांत जी ने की है कि सार्वजनिक परिवहन को और सुगम बनाने के लिए एक राष्ट्र एक कार्ड की योजना है। देखिए कि वो कब लागू होती है और उसका स्वरूप क्या होगा, जब वो आएगी तब हम लोग उस पर बात करेंगे। फिलहाल तो इतना ही पर्याप्त है कि ये नाम आपके दिमाग में दर्ज हो जाए, एक राष्ट्र एक कार्ड। ये सार्वजनिक परिवहन को एक तरह से एक बहुत आसान बनाने के लिए और लोग हमारे जो यात्री हैं उनको आकर्षित करने के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत योजना हो सकती है। मित्र, न्यूज में तो वो बात नहीं है लेकिन अखबारों में आपने पढ़ा होगा और ये पिछले 3-4 दिनों से ये घटना घटित हो रही है और वो है सवर्णों का आंदोलन। अक्सर आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे और उसमें हो ये रहा है और खासकर मध्य प्रदेश में ये थोड़ा सा ज्यादा जोर पकड़ चुका है कि आपको मालूम है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अपराध निवारण जो कानून बना था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी सीधे सीधे अरेस्ट न कर लिया जाए क्योंकि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी भी अपनी स्वतंत्रता है, उनके भी अपने मौलिक अधिकार हैं। बेहतर है कि पहले उनकी थोड़ी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली जाए और अगर सही पाया जाता है तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं बहुत ही सामान्य शब्दावली में यह बात आपसे बता रहा हूं। आपको मालूम है कि फिर इसको लेकर के आंदोलन हुए थे, राजनीतिक दलों ने भी इसकी आलोचना की थी कि इससे तो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो हैं उनके ऊपर अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि जो सवर्ण हैं वो ताकतवर होते हैं, उनके खिलाफ तो फिर कोई दर्ज शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वो प्रभावशाली लोग होते हैं। अपनी बात वो भी ठीक कह रहे थे अपनी जगह पर, क्योंकि सारा जो संकट होता है वो इम्प्लीमेंटेशन का ही संकट होता है कि किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। उन सारी स्थितियों को देखते हुए फिर आपको मालूम है कि केंद्र सरकार एक संशोधन अधिनियम लेकर के आई और बकायदे उस एक्ट को संशोधित कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट करके, और फिर से वो पुरानी स्थिति में लेकर आ गई कि किसी को भी तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। सच पूछे तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं वो उसी जो एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसी के तहत, या कह लीजिए कि पुराने एक्ट को फिर से ज्यों का त्यों कर दिया गया है, उसी के खिलाफ ये आंदोलन है। अब आप देखिए कि इसका सामाजिक प्रभाव आपको और राजनीतिक इम्पैक्ट इसका देखना होगा। अभी इसकी शुरुआत हुई है, देखते हैं कि ये कहां तक जाता है। बहुत अच्छा होगा कि इस आंदोलन का यहीं से कोई हल निकालने की कोशिश की जाए और राजनीतिक दल आपस में बैठें और समझा बुझाकर इसे किसी तरीके से कोई रास्ता निकालें कि ये आग ज्यादा न भड़के। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे आंदोलनों से, देखिए समाज अब सीधे सीधे दो भागों में आपको फिलहाल बटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो ये है कि एक गैर सवर्ण हो गए और एक सवर्ण हो गए। आजादी के इतने साल हो चुके हैं, आप कह लीजिए 70 साल से अधिक हो गए हैं, और अगर अभी भी हम समाज को इस तरीके से बांटकर देखने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि समाज बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह एक खतरनाक बात होगी भारत जैसे देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। यहां जो सबसे बड़ा संकट मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर दिखाई देता है, और आप सब भी इस पर विचार कर सकते हैं कि रिजर्वेशन तो देखिए आवश्यक है, यहां तक कि उन पर उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसको देखते हुए भी उनके लिए संरक्षण भी आवश्यक है, नो डाउट। शहरों में तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर है लेकिन गांव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वहां अभी भी उस तरह की चीजें अखबारों में पढ़ने सुनने को मिल जाती हैं। अब होगा यह कि इसके लिए थोड़े से कुछ ऐसे प्रोविजंस किए जाएं कि इस कानून का दुरुपयोग न हो सके, दुरुपयोग को रोका जाए, चाहे वो किसी भी पक्ष में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को लागू किया जाए या संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, और नो डाउट कि जो खासकर जो दलित वर्ग है या जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें भी राष्ट्र, उनका भी राष्ट्र है, उन्हें भी मुख्य धारा में शामिल किया ही जाना चाहिए, और इसके लिए अलग अलग तरह से कोशिशें भी हो रही हैं लेकिन अभी तक जितना हो जाना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, और इसीलिए इन सब चीजों की जरूरत भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं 70 साल में हमें जो असफलता मिली है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम क्यों असफल हुए हैं और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, कैसे चीजों को तार्किक बनाया जाए, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो कल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, कैसे उसे अधिक व्यावहारिक बना जाए, इन मुद्दों पर भी अगर हम बात करें, यानी कि दो मुद्दे साफ साफ हो, एक तो रचनात्मकता का क्षेत्र हो, समावेशी विकास उनका हो, समावेशी वो मुख्य धारा में शामिल हो सके, उस पर विचार किया जाए बहुत ही व्यावहारिक तरीके से, और दूसरा एक्ट को लेकर के भी कि कैसे एक्ट के मिसयूज को रोका जाए तो शायद कोई रास्ता निकल सके। तो दोस्तों ये एक बिंदु है, और चूंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये समस्या और आगे बढ़े, अब देखते हैं कि क्या रूप लेता है, उस पर फिर उस तरीके से हम लोग विचार करेंगे। अब दोस्तों मैं आता हूं मुख्य विषय पर, जो है शहरी नक्सली। देखिए शहरी नक्सली ये अभी का क्वाइन किया हुआ शब्द है, इससे पहले नक्सली शब्द तो था लेकिन शहरी नक्सली शब्द उस तरीके से नहीं आया था। हो सकता है कि कभी कभी कोई चर्चा हो गई हो, लेकिन इस बार शहरी नक्सली शब्द कुछ ज्यादा ही प्रचलन में आ गया है। इसमें दो शब्द हैं और आप समझ भी गए होंगे, शहर में रहने वाले नक्सली, राइट। तो अब हम इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं, ये शहर को तो आप लोग समझते ही हैं। जब हम नक्सली कहते हैं तो हमारे दिमाग में दो तीन तरह की इमेजेस निकलती हैं। पहली बात यह है कि नक्सली जंगलों में गांव में रहते हैं, नंबर वन। दूसरी जो इमेज बनती है वो यह है कि वो हिंसा का सहारा लेते हैं। तीसरी जो इमेज बनती है कि वो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। चौथी जो इमेज बनती है कि वो मार्क्सवादी विचारधारा के तो है लेकिन हिंसा का सहारा लेते हैं, और जो हिंसात्मक मार्क्सवादी विचारधारा है वो माओ से आया हुआ है। इसके बारे में मैंने पहले थोड़ी सी चर्चा की थी अगर आपको ध्यान हो तो, जो माओ, जो माओ से तुंग थे, जो जिन्होंने चीन में क्रांति की, कम्युनिस्ट क्रांति की थी, उनका सीधा सीधा कहना था कि जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, वो बंदूक की नाल से निकलती है। उस समय बारह बोर वगैरह हुआ करती थी, नाल वाली बंदूकें हुआ करती थी, यानी कि हिंसा से ही आजादी प्राप्त की जा सकती है। अब ये जो मार्क्सवाद है, अब देखिए मार्क्सवाद का सीधा सीधा कहना है कि जो सत्ता है बेसिकली सत्ता बुर्जुआ वर्ग की होती है, पूंजीपतियों की होती है, उच्च वर्ग की होती है, तो ये जो नीचे जो वर्ग हैं, जो मजदूर किसान, ये इनका शोषण होता है, ये मार्क्सवाद का मानना है। तो इसका उपाय ये है कि अगर सत्ता पर उनका अधिकार हो जाए तो उनका शोषण होना बंद हो जाएगा। तो सत्ता पर अधिकार करना है, ये वर्ग सत्ता पर अधिकार करेगा तो कैसे करेगा, उसके लिए उन्होंने आंदोलन की और इन सब की बात कही। माओ ने उसे बिल्कुल हिंसात्मक आंदोलन में तब्दील कर दिया कि उसके लिए हिंसा का सहारा लेना होगा, और किसके खिलाफ हिंसा का सहारा लेना होगा, राज्य के खिलाफ या जो उच्च वर्ग है उसके खिलाफ। इसी सिद्धांत को लेकर के ये नक्सलवाद चलता है, भारत का जो नक्सलवाद है इसी को लेकर चलता है। ये सिद्धांत आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि जब हम कहते हैं शहरी नक्सली, तो शहरी नक्सली आप किसको कह रहे हैं, यहां देखिए मैं सही है गलत है उस बात पर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि किसको इंडिकेट कर रहा है जो अभी अखबारों में हमें पढ़ने को मिल रहा है और बहसों में सुनने को मिल रहा है। ऐसे शहरी लोग, शहर में रहने वाले लोग, ये जंगलों में नहीं रह रहे, ये गांव में नहीं रह रहे, ये शहर में रह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो नक्सलवादी घटनाओं से जुड़े हुए हैं, उनका वैचारिक समर्थन करते हैं। वैचारिक समर्थन ही नहीं करते बल्कि उनके विचारों का प्रचार प्रसार भी करते हैं और अपने जरिए उनके विचारों को प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो शहर में रहने वाले, जिन्हें शहरी नक्सली कहा जाता है, बट नेचुरल है कि वो भी हिंसात्मक जो आंदोलन है, कह लीजिए हिंसात्मक आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये अलग अलग संस्थानों में मौजूद है, ये कहीं भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इन्हें साहित्यिक जगत में पा सकते हैं, सार्वजनिक जीवन में पा सकते हैं, पत्रकारिता में पा सकते हैं, एनजीओ में पा सकते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में पा सकते हैं, कहीं मतलब हर जगह होंगे। तो इनका जो पर्पज होता है, ये यू कह लीजिए कि ये नक्सल विचार, नक्सलवादी विचारों का एक शहरी कैडर है, और इनका जो काम है वो है कि किस तरीके से इन विचारों को माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए, और अगर नक्सलियों के खिलाफ कोई आंदोलन, कोई सरकार बहुत कड़ा कदम उठा रही है या किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो मानव अधिकारों की बात करके उनका पक्ष लिया जाए, उनको किसी तरीके से बचाया जाए, कानून की बात कही जाए, मौलिक अधिकारों की बात कही जाए, तो इस तरीके से वो उनका समर्थन करते हैं। और इस तरह के वर्ग को, इसी कैडर को शहरी नक्सली कहा गया है। तो संक्षिप्त में मित्रों मैंने ये बात आपको बताई है, और डेफिनेटली आपको जब जानना चाहिए कि शहरी नक्सली क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आप उनके रूप स्वरूप को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक उनसे संबंधित जो भी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी वो स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। तो फिलहाल समय को देखते हुए मित्रों इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं दो क्लिपिंग्स की तरफ आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक कारपोरेट जगत को लेकर के नई दुनिया की क्लिपिंग्स है जीएन वाजपेयी जी का, ये आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। और दूसरा दोस्तों दैनिक भास्कर का डीबी स्टार आता है, उसमें खासकर हेल्थ को लेकर के कुछ अच्छी बातें दी हुई है, ये दोनों आप जरूर देखेंगे। और दूसरे भी आर्टिकल्स हैं वो आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं अनीता यादव, गौतम प्रकाश, तलहा खान सागर मध्य प्रदेश से, राज सिंह बांका बिहार से, उमेश कुमार सैनी दिल्ली से, शैली त्यागी, दिनेश कुमार, सूर्यांश शुक्ला, हेतराम प्रजापत जयपुर से, प्रियांशु मिश्रा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, प्रियंका सिंह दिल्ली से, योगेश पुरबिया उदयपुर राजस्थान से, और अंबिका यादव। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।